प्रयतामहिम चिन्तयानो हृषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत् अशिनां संविशंस्थैस्तान् पुण्याना प्रयतामहिम् चिन्तयानो हृषिकेशम् वपश्यत् तन्मयं जगत् अशिनां संविशंस्थैस्तान् पूजन्या प्रयतामहिम् चिन्तयानो हृषिकेशम् वपश्यत् तन्मयं जगत् Next. While sitting on his throne or in his sitting room, while lying on his bed, or indeed while situated anywhere, and while eating, sleeping, or walking, Kamsa saw only his enemy, the Supreme Lord, Hrishikesha. In other words, by thinking of his all-pervading enemy, Kamsa became unfavorably Krishna conscious.
Anuvad. Singhasan par athva apne kamre mein baithe, bistar par lete ya kahin bhi rehte huye, khate, sote ya ghoomte huye, Kans keval apne shatru, Bhagwan Hrishikesh ko hi dekhta tha. दूसरे शब्दों में अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते कंस प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया था.
जय श्री रूप गोस्वामी हैज डिस्क्राइब्ड द फाइनेस्ट पैटर्न ऑफ डिवोशनल सर्विस एज अन्याविलत Anukulina Krishnanas Su Ilanam, or cultivating Krishna consciousness favorably.
तात्पर्य श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार को अनुकूलन कृष्णानुशीलनम कहा है.
Kamsa, of course, was also Krishna conscious, but because he regarded Krishna as his enemy,
निसंदेह कंस भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु वह कृष्ण को शत्रु मानता था.
Even though he was fully absorbed in Krishna consciousness,
यद्यपि वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में तल्लीन था,
his Krishna consciousness was not favorable for his existence.
परंतु उनकी कृष्ण भावना उनके अस्तित्व के लिए अनुकूल ना थी.
Krishna consciousness favorably cultivated makes one completely happy.
यदि कृष्ण भावना अमृत का अनुकूल अनुशीलन किया जाए तो मनुष्य इतना सुखी हो सकता है.
So much so that a Krishna conscious person does not consider Kaivalya Sukham or merging into the existence of Krishna to be a great gain.
इतना सुखी हो सकता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कैवल्य सुखम अर्थात कृष्ण में तादात्म्य भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं लगता.
Kavalyam Nadakayate, for a Krishna conscious person, even merging into the existence of Krishna or Brahman, as impersonalism aspire to do so, is unfavorable.
Kaivalyam Nadakayate, Krishna Bhavana Bhavit Vyakti ke liye, Nirvishesh Vadiyon Dwara Abhisht, Krishna Athva Brahme Tadatme Asuvidha Janak Lagta Hai.
Kaivalyam Nadakayate, Tridash Pura Kesha Pushyate. Karmis hanker to be promoted to heavenly planets.
Kaivalyam Narkayate, Tridash Pura Akash Pushpayate. Karmijan Swarg Jane ki Lalsa Karte hain.
But a Krishna conscious person considers such promotion as will of the wisp.
Kintu Krishna Bhavna Bhavit Vyakti, Ise Vyarth ka Maya Jal hi Mante hain.
Or good for nothing.
अथवा व्यर्थ इसका कोई उपयोग ना हो.
In English language, will of the wisp as generally means sort of like flower petals blowing in the wind, insignificant.
अंग्रेजी भाषा में will of the wisp करके जो फ्रेज है उसका अर्थ है कि इस प्रकार से चीज जो कि हवा में उड़ रही हो जिसकी कोई ज्यादा मूल्य ना हो.
Therefore, Srila Prabhupada says, good for nothing.
इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं जिसका उपयोग में कोई ज्यादा मूल्य नहीं
है.
दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दमष्ट्रायते. योगी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं और सुखी बनते हैं.
But a Krishna conscious person neglects the method of yoga.
किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योग विधि की उपेक्षा करते हैं.
He is unconcerned with the greatest of enemies, the senses, which are compared to snakes.
वह इंद्रिय रूपी बड़े बड़े शत्रुओं की परवाह नहीं करता जो सर्पों के समान हैं.
For a Krishna conscious person who is cultivating Krishna consciousness favorably, the happiness conceived by the karmis, jnanis and yogis is treated as less than a fig.
किंतु कृष्ण भावना मृत का अनुकूल भाव से अनुशीलन करने वाले व्यक्ति कर्मियों ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले
However, because of cultivating Krishna consciousness in a different way, that is inimically, was uncomfortable in all the affairs of his life.
करने जाने वाले सुख की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते, पर कंस भिन्न प्रकार से शत्रुता के भाव से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहा था.
Whether sitting, sleeping, walking or eating, he was always in danger.
अतः अपने जीवन के सारे कार्यकलापों में बैठते सोते घूमते अथवा खाते बेचैनी का अनुभव करता था और अपने आप को सदा संकट में पाता था.
A non-devotee or atheist also cultivates God consciousness by trying to avoid God in everything.
भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है. अभक्त या नास्तिक भी ईश चेतना का अनुशीलन करता है किंतु हर वस्तु में ईश्वर को नकारता है.
For example, so-called scientists who want to create life by a combination of chemicals regard the external material energy and elements as supreme.
उदाहरणार्थ तथा कथित विज्ञानी जो रसायनों के संयोग से जीवन का सृजन करना चाहते हैं वे बाह्य भौतिक तत्वों को सर्वोपरि मानते हैं.
Such scientists do not like the idea that life is part and parcel of the Supreme Lord.
ऐसे विज्ञानियों को यह विचार रास नहीं आता कि जीव भगवान का अंश है.
As clearly stated in the Bhagavad Gita, Mama Vangso Jivaloke Jivabhuta. The entities do not arise from a combination of material elements such as earth, water, fire, air.
जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः. जीव पृथ्वी जल वायु और अग्नि जैसे भौतिक तत्वों के संयोग से नहीं बनते.
So skipping ahead, Prabhupada says that although Kamsa was always absorbed in thoughts of Hari, the Supreme Personality of God, he was not happy.
Where is it, Maharaj? तो अगले अब हम दूसरे पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं. यद्यपि कंस हरि के विचारों में सदैव डूबा रहता था किंतु वह सुखी नहीं था.
On the other hand, Srila Rupa Goswami resigned from office as a governing minister to sit beneath a tree and yet he was happy.
परंतु दूसरे ओर श्री रूप गोस्वामी ने वृक्ष के नीचे बैठने के लिए सरकार के मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था फिर भी वे सुखी थे.
He did not care for his comfortable position as a minister.
उन्हें अपनी मंत्री की सुखदायक पद की परवाह नहीं थी.
He was fully satisfied sitting underneath a tree.
वो एक पेड़ के नीचे बैठकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे.
Let us recite the Guru Parampara. Agyana Agyana Shalakaya. Means that we don't understand anything.
तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य का अर्थ है कि हम कुछ नहीं समझते.
We are situated in the darkness of ignorance.
हम अंधकार अज्ञानता के अंधकार में स्थित हैं.
We should always be honest with this.
हमें इसके प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए.
It's not that because I'm chanting Hare Krishna I have some kind of merit.
ऐसा नहीं है क्योंकि मैं हरे कृष्ण का जप कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ उपलब्धि है.
That may be so, but a devotee never thinks like that.
ऐसा हो सकता है लेकिन एक भक्त कभी ऐसे नहीं सोचते.
He only thinks or she only thinks I am in complete darkness and my spiritual master is present tense opening my eyes with a torchlight of knowledge.
वे हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि मैं तो अंधकार के अज्ञानता के अंधकार में हूँ और मेरे गुरु महाराज मेरी आंखें खोल रहे हैं ज्ञान के प्रकाश से.
This is not advanced Krishna consciousness. This is the very beginning of Krishna consciousness to offer dandapada mams and gratitude that my Guru Maharaj is opening my eyes with the torchlight of knowledge because he is representing Srila Prabhupada.
तो ये कोई उन्नत कृष्ण भावना अमृत के लक्षण नहीं है. ये शुरुआती कृष्ण भावना अमृत का ही है कि भक्त जो है हमेशा सोचते हैं कि क्योंकि मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं तो वे ज्ञान के प्रकाश से मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर रहे हैं और मेरी आंखों खोल रहे हैं.
So, there are 7 indirect expressions of ecstatic love for Krishna.
कृष्ण भगवान के प्रति भावपूर्ण प्रेम के व्यक्ति 7 प्रकार के अपरोक्ष लक्षणों से की जाती है.
They are described in the 33rd chapter of Nectar Devotion.
ये भक्ति रसामृत सिंधु के 33वें अध्याय में इनका वर्णन आता है.
The first one listed is laughter.
पहला है हास्य.
I'll read some of the illustrations because they're very juicy.
मैं इनमें से कुछ पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत ही रोचिकर हैं.
After he had stolen some yogurt from the pots of 2 gopis, Krishna had told one of his gopi friends, "My dear beautiful friend, I can take an oath that I have not stolen even a drop of yogurt from your pot."
एक दो गोपियों के मटकों से दही चुराने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी सुंदर सखियों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने आपके मटके से एक बूंद भी दही नहीं लिया.
But still your friend Radharani is very shamelessly smelling the flavor of my mouth.
पर फिर भी आपकी जो सखी हैं राधा रानी वो निर्लज्जता पूर्ण मेरे मुख की गंध को सूंघ रही हैं.
Kindly forbid her from this devious policy of putting her face near mine.
कृपया करके उनको रोकिए कि वो इस प्रकार से अपने मुखमंडल को मेरे मुख के समक्ष लाएं.
When Krishna was speaking like this, the friends of Radharani could not check their laughter.
जब इस प्रकार से कृष्ण कह रहे थे तो राधा रानी की सखियां अपनी हंसी को ना रोक पाईं.
This is an instance of laughter and ecstatic love.
ये भाव प्रेम भक्ति में जो हंसी होती है उसका एक उदाहरण है.
Of course, there are many other examples, but here Srila Rupa Goswami is giving only one example.
ऐसे अनेक उदाहरण हैं, पर यहाँ श्रीला रूप गोस्वामी केवल एक उदाहरण दे रहे हैं.
So laughter is an indirect expression of love of God.
तो जो हंसी है वो कृष्ण प्रेम का एक अपरोक्ष अभिव्यक्ति है.
Next is astonishment.
दूसरा है आश्चर्यचकित होना.
Once Brahma was watching all the cows and the cowherd boys dressed in yellow garments and decorated with valuable jewels.
एक बार ब्रह्मा देख रहे थे कि जितने गौ माता और ग्वाले बहुत ही सुंदर पीले वस्त्रों में और सुंदर सुंदर रत्नों में सजे हुए थे.
The boys were expanding into their forearms and were being worshipped by many hundreds of other Brahmas.
और ये सारे जितने भी बालक थे इन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किए थे और
All the cowherd boys began to express their joyfulness for being with Krishna, the supreme Brahman.
और अनेकों ब्रह्मा इनकी उपासना कर रहे थे और ये बहुत ही खुश थे भगवान कृष्ण जो परम ब्रह्म है उनके सानिध्य में.
At that time, Brahma showed his astonishment by exclaiming, "What am I seeing here?"
यहाँ पर ब्रह्मा अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हैं और कहते हैं मैं ये क्या देख रहा हूँ.
This is an instance of astonishment and ecstatic love.
ये प्रेम भक्ति में आश्चर्य की अभिव्यक्ति है.
So first we have laughter, next we have astonishment.
पहले हमारे पास हास्य था, अब हमारे पास आश्चर्य है.
Next is chivalry.
तीसरा है वीरता.
Once on the bank of the Jamuna, there was a crackling sound by dry leaves.
एक बार यमुना के तट पर सूखे पत्तों की बहुत ही आवाज आई.
Giggling from the coward boys.
और ग्वाल बालों की हंसी की आवाज थी.
And thundering from the sky.
और आकाश में बिजली खड़क रही थी.
So we see that from this description that the coward boys are just kids.
हम देख सकते हैं कि इससे कि जो ग्वाल बाल हैं वो बच्चे हैं.
Quite often artists outside of ISKCON show Krishna as being too old.
कभी कभी जो ISKCON से अलग चित्रकार हैं वो दिखाते हैं कृष्ण बहुत बड़े हैं.
If he's shown with his coward boyfriends but looks like he's 25, bogus.
कोई अगर ऐसे दिखाए कि जो ग्वाल बाल हैं वे 25 वर्ष के हैं तो ये गलत है, ठीक नहीं है.
But generally older people don't giggle.
क्योंकि जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो फुसफुस नहीं करते.
Although I know one Maruchi who giggles, she's about 50 years old, but she still giggles.
यदि भी मैं एक माता जी को जानता हूँ जो 50 वर्ष की हैं लेकिन अभी भी फुसफुस करती हैं.
So once there was crackling sound of dry leaves and giggling from the coward boys.
तो सूखे पत्तियों की ध्वनि थी और ग्वाल बाल ठाके मार रहे थे.
And thundering from the sky.
और आकाश में गर्जना हो रही थी.
Shridham of course is one of Krishna's buddies.
श्रीदाम भगवान कृष्ण के एक सखा हैं.
He was tightening his belt to fight with Krishna.
वो श्री कृष्ण से लड़ने के लिए अपना फेंटा कस रहे थे.
The conqueror of the demon Agha.
जिन्होंने अघासुर का वध किया था.
This is an instance of chivalry and ecstatic love.
ये उत्साह रति का दृष्टांत है.
So we see how Krishna's boyfriends are completely under yoga maya. Because they think they can fight with Krishna, although he kills so many demons.
तो हम देख सकते हैं कि किसे कृष्ण भगवान के ग्वाल बाल मित्र योग माया के अंतर्गत ठाके मार रहे हैं.
The next, the fourth quality that is considered indirect expression of ecstatic love is lamentation.
तो भाव की गौण अभिव्यक्तियों का चौथा जो उदाहरण है, दृष्टांत है, वो है शोक रति.
In the 10th canto, 7th chapter, verse 25 of Srimad Bhagavatam, there is a description of Krishna's being taken away by the whirlwind demon, Trinavarta.
Srimad Bhagavatam ke 10th skand ke 7th adhyay mein Trinavart dwara Krishna ko udakar le jane ka varnan aaya hai.
As Krishna was being carried thus up into the sky, all the gopis began to cry aloud.
जब इस तरह कृष्ण को ऊपर आकाश में ले जाया जा रहा था तो सारी गोपियां उच्च स्वर से रोने
लगीं.
वे माता यशोदा के पास पहुंची और उन्होंने उन्हें बतलाया कि वे नंद कुमार को नहीं ढूंढ सकीं. उन्हें तो आंधी उड़ा ले गई
है.
ये शोक रति का उदाहरण है.
Also states that when Krishna was dancing on the heads of Kaliya, the gopis were feeling anxiety and fear.
Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ji is cheez ke bhi varnan karte hain ki jab Bhagwan Krishna Kaliya ke fano par nitya kar rahe the to gopiyan bahut chinta ka anubhav kar rahi thi.
But they were not afraid for themselves, they were afraid for Krishna.
Ve apne liye nahi ghabra rahi thi parantu Krishna ke liye ghabra rahi thi.
Thakur explains that When Kaliya grabbed Krishna in his coils, the gopis were just beginning to fall in love with Krishna. So they're very, very small.
Kaliya ये भी बताते हैं कि जब Kaliya ने अपनी कुंडली में भगवान कृष्ण को दबोच रखा था, तो गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम करने लग रही थीं, जबकि यदि भी वो बहुत ही छोटी थीं.
Must have been before Govardhan Lila.
ये गोवर्धन धारण से भी पहले की लीला है.
Skilly stated that Krishna was 7 years old during Govardhan Lila.
ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान ने गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाया था तो वे 7 वर्ष के थे.
But being caught on the coils of Kaliya was before that, isn't it?
और कालिया का जो ये लीला हुई उससे पहले थी.
So under Yoga Maya, they had no clue that he was a Supreme Personality of Godhead. No clue whatsoever. That's Braja. That's inside whorl of the lotus of Braj.
तो ये योग माया के अंतर्गत उनको बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं था कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है. तो ये ब्रज का भाव है जो कि कमल के अंदर है.
There's another area of Vrindavan inside the lotus flower.
और उस कमल के अंदर एक और क्षेत्र है वृंदावन का.
Where the devotees have more relationship like Mother Devaki.
जहाँ पे भक्तों की भगवान से देवकी माता जैसा संबंध होता है.
Still it's more it's counted not counted as Mathura Ras because it's still more intimate than Mathura.
ये मथुरा के रस जैसा नहीं माना जाता क्योंकि ये मथुरा के रस से ज्यादा आत्मीय है.
But in that ras, they remain in some you could say coloration of Aishwarya Bhav.
परंतु उस रस में ऐश्वर्य भाव की गंध रहती है.
You know the meaning Aishwarya Bhav?
ऐश्वर्य भाव का अर्थ समझाइए.
What is?
Worship in the mood of opulence.
Opulence, or you could say formality. Yes, formality. More formal.
तो ऐश्वर्य भाव का अर्थ है कि औपचारिक रूप से भगवान की आराधना की जाती है.
So this is explained by Bhanu Swami that there are two sections of Braj. There is the section in which nobody knows Krishna is the Supreme Lord.
तो ये भानु स्वामी महाराज जी के द्वारा समझाया गया है कि ब्रज के दो विभाग हैं. एक विभाग में ऐसा है कि कोई भी कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं जानता.
Even though he does so many superhuman things.
यद्यपि वो इतने महान महान कार्य करते हैं जो मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है.
He does all these superhuman things like killing demons.
अति मानवीय कार्य जिस प्रकार से वो इतने बड़े बड़े असुरों का वध करते हैं.
They make think for a split moment that he's the Supreme Lord.
एक क्षण के लिए उनके दिमाग में आ सकता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं.
But then seconds later they become covered again by Yoga Maya and they forget. They only see their beloved Krishna, the little cute little boy.
परंतु दूसरे ही क्षण योग माया के आवरण से आच्छादित हो जाते हैं और फिर समझने लगते हैं कि वे उनके प्रिय कृष्ण हैं.
Actually this is our line.
और ये हमारी गुरु परंपरा है.
So the most intimate inside section of Goloka, that's where we're headed.
तो हम उसी गोलोक वृंदावन के उस क्षेत्र के प्रति उन्मुख हैं जहां पर इस प्रकार का आत्मीय और इतना गूढ़ कृष्ण प्रेम है.
But if there are some devotees that are too much attached to the Aishwarya conception.
परंतु कुछ भक्त हैं जो कि ऐश्वर्य भाव से ज्यादा आसक्त होते हैं.
Maybe they could go to the other section of Braj.
तो फिर वो ब्रज के दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं.
Well, that's not where Srila Prabhupada is.
परंतु प्रभुपाद वहाँ नहीं है.
How many of you seen the photographs of Srila Prabhupada making funny faces?
आप में से कितने भक्तों ने प्रभुपाद जी के ऐसे चित्रों को दर्शन किया है जिसमें प्रभुपाद जी हास्यप्रद हैं?
So most of you seen, he makes very, very funny faces, you know. That is outside of Aishwarya Bhav, certainly.
तो आपने आप में से बहुत ज्यादातर भक्तों ने देखा है कि प्रभुपाद जी बहुत ही ज्यादा हास्यप्रद व्यक्त करते हैं अपने आप को और वो निश्चित रूप से ऐश्वर्य भाव से बाहर हैं.
In some of the photographic evidence, he looks like a imp. Imp means elf. Not human expression, but more very super child funny.
तो कुछ ऐसे भी फोटो हैं जिसमें प्रभुपाद जी का ऐसा हास्यप्रद अभिव्यक्ति है कि ऐसा लग रहा है कि वे मनुष्य नहीं है, साधारण नहीं है.
Somebody in Aishwarya Bhav, they cannot do that.
जो ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं वो इस प्रकार नहीं कर सकते.
In that sense, Srila Prabhupada's nitya ras, you could say, leaks through in some of the photographs you can see.
तो इन फोटोज के द्वारा हम प्रभुपाद जी के जो नित्य स्वरूप है उसकी झलक देख पाते हैं.
Very funny faces you can see on the photographs, some of them.
तो बहुत ही हास्यप्रद प्रभुपाद जी की अभिव्यक्तियां होती हैं उन फोटो में.
Oh. You know, just plain funny faces.
तो इस प्रकार से होते हैं.
Sometimes rolling his eyes.
अपनी आंखों को भी वो घुमा रहे होते हैं.
These are signs of ecstatic love from Braj, but not Aishwarya.
तो ये ब्रज की जो प्रेम भक्ति का लक्षण है लेकिन ऐश्वर्य का नहीं है.
Of course, to the Sri Vaishnavas, this is a completely foreign concept. They're not interested in an intimate relationship with Krishna. They want Aishwarya above 100%.
निश्चित रूप से जो श्री वैष्णव हैं, वे इस प्रकार से जो गूढ़ प्रेम भक्ति है जहाँ भगवान के ऐश्वर्य भाव का विचार नहीं रखा जाता, उसमें रुचि नहीं रखते. वो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य भाव की भक्ति में रुचि रखते हैं 100%.
At the famous Balaji temple in South India, up on top of the mountain, every morning they wake up Balaji by singing Krishna's pastimes. About 20 Brahmins singing, reciting Krishna's pastimes.
तो जो प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है तिरुपति में, वहां पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण किया जाता है.
So, Balaji likes hearing the pastimes of Krishna, that's why they're singing it.
तो निश्चित रूप से भगवान बालाजी को भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करना अच्छा लगता है, इसीलिए भक्तगण उनका उच्चारण करते हैं.
But in their heart of hearts, they don't want to go to Braj. They know about Braj. Sri Vaishnavas know all about Braj, but they have no attraction.
अपने हृदयों में तो वे ब्रज के बारे में उनको ज्ञान है, परंतु उनको ब्रज से आकर्षण नहीं है.
Because Aishwarya Bhav is conspicuous by its absence.
क्योंकि ब्रज में ऐश्वर्य भाव का थोड़ा सा गंध भी नहीं है.
So, we see that Prabhupada is taking all his followers to the most intimate portion of the inside of the whore of the lotus, namely Brajadam, without Aishwarya, without any Aishwarya.
तो हम यहाँ देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अपने सभी अनुयायियों को ब्रज धाम के सबसे अंतरंग जो भाग है जहाँ पे ऐश्वर्य भक्ति का बिल्कुल भी उपस्थिति नहीं है, वहाँ पर ऐसी गूढ़ प्रेम भक्ति के क्षेत्र में लेके जा रहे हैं.
The fact of the matter is, you could look at so many photographs of Srila Prabhupada where he's faking Aishwarya.
ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद जी के चित्र हैं जिसमें प्रभुपाद जी ऐश्वर्य के ऐश्वर्य भाव का अवहेलना कर रहे हैं.
He's play acting the role of Aishwarya Bhav.
ऐश्वर्य भाव की नकल उतार रहे हैं.
Like in Los Angeles, for example, there are photographs of Prabhupada looking at with folded hands. You see, most of the photographs of Prabhupada before deities, he has folded hands and appears to be in Aishwarya relationship with Krishna.
जैसे कि लॉस एंजलिस में भोपाल जी का चित्र है, भोपाल जी हाथ जोड़ के खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्य भक्ति कर रहे हैं.
The only way you could tell that his actual relationship is not Aishwarya is that a tear would be running down his cheek.
परंतु उनके गाल से जो है एक आंसू निकल रहा है.
He was just as a perfect yogi, he was executing extraordinary sense control.
जैसे एक बहुत ही सिद्ध योगी होता है जो इंद्रियों में पूर्ण रूप से संयम कर पाता है, प्रभुपाद जी उस प्रकार से कर रहे हैं.
Because if he repeatedly showed all kinds of ecstatic symptoms, he feared very strongly that his disciples would imitate and become sahaja.
क्योंकि प्रभुपाद जी को डर था, अगर प्रभुपाद जी बार बार इस प्रकार से जो भाव भक्ति के लक्षण हैं वो व्यक्त करेंगे तो जो उनके अभी शिष्य हैं वो उनकी नकल उतारने लग जाएंगे. तो हम आगे पढ़ेंगे.
The comments about first we discussed laughter, then astonishment, then chivalry.
पहले हमने हास्य रति के बारे में पढ़ा, फिर विस्मय रति, फिर उत्साह रति.
Next is anger.
और अब हम पढ़ेंगे क्रोध रति के विषय में.
When Jatila, the mother of Abhimanyu, saw Krishna wearing a necklace, she could understand. The jeweled ornament had been given to him by Radharani.
जब अभिमन्यु की माता जटिला ने कृष्ण को रत्न जटित हार पहने देखा तो वह समझ गई कि राधा रानी ने ही उन्हें यह हार दिया होगा.
She therefore became absorbed in anger and began to move her eyebrows, expressing her anger in ecstatic love.
अतः वह क्रोध में डूब गई और उसने अपनी क्रोध रति व्यक्त करने के लिए अपनी भौहें टेढ़ी कर ली.
So generally, devotees don't have such a high opinion of Jatila in that she's trying to break up the love affair between Radha and Krishna. Of course, she never has any luck.
सामान्य रूप से भक्तों का जटिला के प्रति इतना अच्छा भाव नहीं रहता क्योंकि वे राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार में अवरोध उत्पन्न करती हैं, परंतु वे कभी सफल नहीं हो पाती.
She knows that Krishna is Radharani's paramour and she's not happy about it.
वे जानती हैं कि कृष्ण भगवान कृष्ण राधारानी की प्रियतम हैं, परंतु इससे वे खुश नहीं हुए.
Nevertheless, we see from this comment that she Jyotila, although it's not considered one of the top favorable rasas, but in anger, still is anger and ecstatic love. So she has love for Krishna, even though by those that are trying to surrender to Krishna, it's not read as love, but here it's stated it's love and ecstatic anger.
तो यद्यपि उनके उनके विषय में इतना अच्छा भाव नहीं रहता, परंतु यहाँ बताया गया है कि उनको भी कृष्ण प्रेम में क्रोध रति का अनुभव है, तो वे भी कृष्ण से प्रेम है, प्रेम की स्थिति में है.
Next we come to Gasanas.
अब हम जुगुप्सा रति पे आते हैं.
So Gasanas is also a rasa with Krishna.
तो जुगुप्सा भी एक प्रकार से भगवान से रस का आदान प्रदान है.
So from this section, this verse, 24th verse of Srimad Bhagavatam, 9th chapter, 10th canto, or actually it's the second chapter, 10th canto. From this verse, we see that Kamsa was situated in one of the seven unfavorable rasas.
तो जो अभी हमने श्लोक पढ़ा भागवतम का, इससे हम समझ सकते हैं कि कंस इन सात में से एक जो गौर रस है उनमें स्थित है.
He simply thought of Krishna in a ras of Gasanas.
और वे कृष्ण से जुगुप्सा में स्थित हैं.
He saw Krishna's death personified.
और उन्होंने कृष्ण को मृत्यु के रूप में देखा.
And he was obsessing over him.
और वो कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से डूब गए थे.
There's another conspicuous example in Krishna Lila.
इस प्रकार का उदाहरण एक और है कृष्ण भगवान की लीला में.
Of a demon that was obsessing over Krishna in unfavorable ras of Gasanas.
एक और असुर था जो भगवान कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था, परंतु जुगुप्सा में.
Anybody want to volunteer a guess?
कौन है वो जानना जवाब बताना चाहेंगे?
Yes, Shishupal, thank you very much.
बहुत धन्यवाद आपका शिशुपाल.
Because before he could even talk, Shishupal was uttering the name of Krishna and Gasanas.
क्योंकि वो भगवान वो बोल भी नहीं पा रहा था, पहला ही जब उन्होंने भगवान के लिए पहली ही वाणी उन्होंने भगवान को गाली दी.
So he was completely absorbed in ghastly ras with Krishna. But it is considered unfavorable.
तो पूर्ण रूप से जुगुप्सा रति में निमग्न थे.
Devotees are not interested in that kind of relationship with Krishna.
परंतु भक्त इस प्रकार की संबंध में रुचि नहीं रखते.
But it's clear from these descriptions of indirect ras with Krishna that it's still considered a ras, even though it's unfavorable.
परंतु इस वर्णन से हम ये समझ सकते हैं कि ये फिर भी एक गौर रस में आता है यद्यपि भक्तों को इसमें रुचि नहीं है.
So that's Gasanas, and Kamsa was also situated in anger.
तो ये जुगुप्सा है और कंस भी इस प्रकार के रति में स्थित थे.
The next ras is dread.
अगला रति है वो है त्रास रति.
So we see that Kamsa is having sometimes mixed rasas, mixed more than one ras is available for jiva.
तो एक जीव के पास एक से ज्यादा रसों का भी आस्वादन करने की क्षमता होती है. तो यहाँ पे कंस अलग अलग रसों का मिश्रण भी अनुभव कर रहे हैं.
So we see that Kamsa was from these purports by Prabhupada and from this 24th verse, We see that Kamsa was situated often in anger towards Krishna.
तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से और आज के श्लोक से हम देख सकते हैं कि सामान्यतया कंस भगवान कृष्ण के प्रति क्रोध रति में स्थित था, पर क्रोध रति से ज्यादा मात्रा में जुगुप्सा रति थी। उन्होंने कृष्ण को मृत्यु के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में देखा।
And Krishna book is described that just before being killed, so many bad omens were coming to Kamsa.
और ऐसा समझाया जाता है कि मृत्यु से पहले कंस के पास बहुत सारे बुरे शगुन अपशगुन देखने को प्राप्त हुए।
He was seeing ghosts and hobgoblins.
वो उन्हें भूत और प्रेत नजर आ रहे थे।
Couldn't see his own shadow.
अपनी ही परछाई नहीं दिख रही थी।
I think it was donkeys he was seeing, other very unfavorable signs that he was seeing.
और गधे दिख रहे थे और अलग अलग जितने भी अपशगुन हैं वो दिख रहे थे।
So this indicates gassiness.
तो ये जुगुप्सा रति की अभिव्यक्ति है।
And finally dread.
और अंततो गत्वा त्रास रति।
So we see that Kamsa was situated in dread, gassiness and anger.
तो हम देखते हैं कंस त्रास जुगुप्सा और क्रोध रति में स्थित थे।
Obsessively. With obsession.
पूर्ण रूप से इसमें मदोन्मत थे।
And so was Shishupal. That's a fact.
और शिशुपाल भी इसी प्रकार से थे, और ये सत्य है।
Shishupal couldn't even talk, but he was simply thinking in gasness and dread about Krishna and anger. As a tiny infant, he was already angry at Krishna. This is demon.
तो जब वो छोटे से बालक थे, जब वो बोल भी नहीं सकते थे, तो तब भी शिशुपाल अपने विचारों में कृष्ण के प्रति क्रोध, जुगुप्सा और त्रास की भावनाएं रखते थे। तो ये होता है एक असुर।
But this is still counted as a rasa with Krishna, even though they are not considered the seven, their seven indirect rasa, or you could say second class.
परंतु इनको फिर भी कृष्ण भक्ति के परिधि में देखा जाता, कृष्ण भावना की परिधि में देखा जाता है, यद्यपि ये गौड़ हैं, मुख्य रस नहीं हैं।
But it's one way of becoming Krishna conscious.
पर ये कृष्ण भावना भावित होने का एक तरीका है।
Was not accounted as favorable.
पर प्रतिकूल।
Yes, yes. So in the remaining amount of time, we will discuss about Vrindavan Das Thakur. Today is his extremely auspicious appearance day.
तो शेष समय में हम वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में चर्चा करेंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है उनके प्राकट्य का।
In her childhood, Narayani Devi, the niece of Shrivas Pandit, became mad with love of God upon receiving the mercy of Gauranga Mahaprabhu.
अपने बचपन में नारायणी देवी भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में उन्मत्त हो गई चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके।
Later she gave birth to Vrindavan Das Thakur, who was the last disciple of Sri Nityananda Prabhu.
फिर बाद में वो वृंदावन दास ठाकुर की माता बनी, जो कि नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे।
On his guru's order, he wrote Sri Chaitanya Bhagavat.
अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने चैतन्य भागवत का संकलन किया।
So, Krishna Shkavaraj Goswami, although he's written the Chaitanya Charitamrita, he speaks in a very humble way.
यद्यपि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का संकलन किया है, वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक ऐसे बताते हैं।
More or less he's saying, I am just chewing what has been left by Narottam, not Narottam, but by Vrindavan Das Thakur.
वे कहते हैं कि मैं वृंदावन दास ठाकुर जी के उच्चिष्ट ग्रहण कर रहा हूँ।
So Prabhupada comments is practically a law among Vaishnava writers like Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Krishna Shkavaraj Goswami and Vrindavan Das Thakur, that they always keep themselves in the background.
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भक्तों और वैष्णवों के व्यवहार में ये सामान्य है, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज जी, कि वे अपने आप को पीछे रखते हैं।
They never mention anything about their family or lineage or personal history.
वे कभी भी अपनी व्यक्तिगत कुल का वर्णन या अपने व्यक्तिगत इतिहास का वर्णन नहीं करते।
The authors of the best written and most relishable verses collected by Srila Rupa Goswami in his Padyavali remain unknown.
जो रूप गोस्वामी जी की पद्यावली है उस ग्रंथ में बहुत ही विशिष्ट श्लोकों का संकलन है, पर उनके जितने भी संकलनकर्ता हैं उनके नाम नहीं प्राप्त होते।
During the 16th century, entire books of exceptional transcendental prose and poetry were penned by Vaishnavas, preferring to remain anonymous. Penned means written.
16वीं शताब्दी में बहुत ही विशिष्ट आध्यात्मिक ग्रंथों का संकलन किया गया महान विनम्र वैष्णवों के द्वारा, जिन्होंने अपने आप को छुपाए रखने के लिए बोला, जो सामने नहीं आना चाहते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने गुरुओं का गुणगान कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत के हर अध्याय के अंत में।
श्री रूपा रघुनाथ परे यर अश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, सो ही इज ऑफरिंग हिज रिस्पेक्टफुल ओबेइसेंस प्रेइंग एट द लोटस फीट ऑफ श्री रूपा एंड सत रघुनाथ दास ऑलवेज डिजायरिंग देयर मर्सी। आई कृष्णदास नरेट श्री चैतन्य चरितामृत फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप्स।
तो कृष्णदास कविराज जी प्रार्थना करते हैं कि रूप और रघुनाथ गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा की याचना करते हुए मैं चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।
So, Krishnadas Kaviraj Goswami shows his supreme homage or respects and gratitude by honoring Vrindavan Das Thakur, calling him the Vyas of Chaitanya Charitamrita.
तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी को सम्मान देते हुए कि उनको बोल रहे हैं कि चैतन्य लीला के वे व्यास हैं।
In Anjulila he writes, Vrindavan Das Thakur is Lord Nityananda's favorite devotee and therefore he is the original Vyasadeva in describing the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
अंतलीला में वे लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के सबसे प्रियतम भक्त हैं और वे व्यासदेव हैं और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है।
So, Kaviraj Goswami comments, as Srila Vyasadeva told Sri Krishna's pastimes in Bhagavatam and other Puranas, so similarly, Vrindavan Das Thakur is describing Gauralila in Chaitanya Bhagavat.
तो कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जिस प्रकार से व्यासदेव ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है भागवत और अन्य पुराणों में, उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य लीला का वर्णन किया है चैतन्य भागवत में।
And so in humility, Krishnadas Kaviraj Goswami is also saying, by here Chaitanya Bhagavat, he destroys all misfortune.
और अपनी विनम्रता से वो कह रहे हैं कि चैतन्य भागवत का श्रवण करके भक्त अपने सारे दुर्भाग्य को विनाश कर देते हैं।
Of course, we know that's true of all of the great shastra by saints.
और ये इस पंक्ति सारे शास्त्रों जो महान वैष्णवों के द्वारा लिखित हैं सब शास्त्रों के लिए सत्य है।
It's certainly true of Srila Prabhupada's books also.
और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के लिए भी सत्य है। ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ग्रंथों से निम्न स्तर पे हैं।
Neither are they on a lower level than Vrindavan Das Thakur. Anybody thinks like that is an offender.
और वृंदावन दास ठाकुर से भी निम्न नहीं है और कोई इस प्रकार से तुलनात्मक होता है तो वो अपराधी है।
So Kaviraj Goswami says, anyone who reads Chaitanya Bhagavat will attain, understand the glories of Lord Chaitanya Nityananda, and he will attain the highest perfection of knowledge, pure love of Krishna.
तो कविराज गोस्वामी कहते हैं जो कोई भी चैतन्य भागवत पढ़ता है उसे ज्ञान की परिणति सबसे उत्तम श्रेणी का ज्ञान प्राप्त होगा और गौर निताय के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त होगा।
So next, Kaviraj Goswami makes an extraordinary statement.
कविराज गोस्वामी
एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेटमेंट
ये उनका बहुत ही महान वक्तव्य है
He says that such a book as Chaitanya Bhagavat could not be written by a human being.
वो कह रहे हैं कि चैतन्य भागवत जैसा ग्रंथ कोई मानव नहीं लिख सकता अति मानवीय ग्रंथ है
It seems that Sri Chaitanya Mahaprabhu himself has spoken through the mouth of Srila Vrindavan Das Thakur.
ऐसा लग रहा है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर जी के मुख से बोला है
I offer millions of respects to the lotus feet of Vrindavan Das Thakur.
मेरे कोटि कोटि नमन है वृंदावन दास ठाकुर जी के चरण कमलों में
By compiling such a valuable book, he has delivered everyone from the cycle of birth and death.
इस प्रकार का विशिष्ट ग्रंथ का संकलन करके उन्होंने सबको जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त कर दिया है
So Vrindavan Das Thakur established deities of Gaur Nityananda and Sri Jagannath Dev.
तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने गौर निताय के विग्रहों की स्थापना की
In a village known as Navadvip.
नवद्वीप नाम के गांव में
मोद्रुम
द्वीप में
So Thakur became had so many disciples. He had many disciples, including Gopinath Brahmacharya, descendant of Sri Keshava Bharati.
तो इनके बहुत सारे शिष्य थे उनमें से एक गोपीनाथ
In Krishna's pastimes, Vrindavan Das Thakur is Shrila Vyasadeva.
कृष्ण भगवान की लीला में वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव हैं
His samadhi is in the 64 samadhi area.
उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है
Shri Vrindavan Das Thakur ki
jai
Gaur Premanande
Hari Hari Bol
Questions, comments?
किन्हीं या कोई प्रश्न है टिप्पणी
Yes.
Maharaj, like Kamsa was having envy for Lord. So if it was indirect expression of love, how, but envy cannot exist in spiritual platform, in spiritual world. So how is it that Shishupal and Kamsa were having envy, but still their expressions is counted as indirect expression of love?
Is he saying?
Yadyapi.
Indirect.
But Dushan is on spiritual platform, even indirectly, envy is allowed.
But it's not considered favorable. Shishupal is not considered favorable to us. That means indirect, not the same quality of love.
तो ये परोक्ष है, गॉड है, और इसको हम अनुकूल नहीं मानते हैं.
Gassiness, fear. Dread, they cannot possibly be in the same category as favorable love for Krishna. There's no way.
तो त्रास, जुगुप्सा और क्रोध ये जो हैं ये गौण हैं और इनको अनुकूल नहीं माना जा सकता कृष्ण प्रीति में.
Shishupal was witnessed by everybody at the registry as a sacrifice as merging into Krishna's body as a nun.
और हम ये भी देखते हैं कि राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल जो हैं वो भगवान कृष्ण के कृष्ण में तादात्म्य हो गए
So his jiva was seen entering into Krishna's body. So that's not a desirable mukti, not at all.
तो क्योंकि वो कृष्ण से एकात्म हो गए तो इस प्रकार से भक्त कभी नहीं चाहते
Devotees want to serve.
भक्त सेवा करना चाहते हैं
Anything else?
कोई और प्रश्न है
Okay, thank you very much. Jaga Guru Shri Prabhupada ki jai.
परम पूज्य
की जय गौर प्रेमानंद
परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज की जय